नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पेरिस ओलंपिक 2024 भव्य समारोह के साथ संपन्न। अगले ओलंपिक खेल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेरिस ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और हर भारतीय को उन पर गर्व है। सभी ने निवेशकों को हिंडनबर्ग जैसी भ्रामक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने से पहले संयम बरतने की सलाह दी। अडानी समूह, सेबी अध्यक्ष और उद्योग जगत प्रमुखों ने अमरीकी शोध कंपनी की रिपोर्ट की आलोचना की। भारतीय निर्वाचन आयोग का दल विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से हरियाणा के दो दिन के दौरे पर। राजस्थान में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 22 लोगों की मृत्यु। 7 जिलों में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। और पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग अगले महीने हरियाणा में शुरू होगी। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य समारोह के साथ समापन हो गया है। भारत 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक हासिल किए। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर था और उसे 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक मिले थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
33वें ओलंपिक खेलों का कल पेरिस के स्टेड फ्रांस में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया और इन खेलों की मशाल अब लॉस एंजलिस को सौंप दी गई, जहां 2028 में अगले ओलंपिक खेल होने हैं। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। समारोह में पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी इटांगुए ने तहे दिल से सभी एथलीटों और मेहमानों का आभार व्यक्त किया। साथ ही 45,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स, आयोजकों और पेरिस वासियों का भी शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक ने इन खेलों को सफल बताया और ओलंपिक ध्वज लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास को सौंप दिया। समापन समारोह में मशहूर अमरीकी अभिनेता टॉम क्रूज स्टेडियम से मोटरसाइकिल पर ओलंपिक ध्वज लेकर निकले। पेरिस ओलंपिक खेलों में 17 से ज्यादा नए विश्व कीर्तिमान बने। 1 रजत और 5 कांस्य यानी कुल 6 पदकों के साथ भारत रहा पदक तालिका में 71वें स्थान पर। इन खेलों के सबसे सफल एथलीट रहे मेजबान फ्रांस के तैराक लियो मचा, जिन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। वर्ग में अमेरिका की तैराक टोरी हस्के का प्रदर्शन सबसे श्रेष्ठ रहा। टोरी ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस।
वहीं अमेरिका 40 स्वर्ण सहित कुल 126 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। चीन भी 40 स्वर्ण पदकों के साथ 91 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। जापान 20 स्वर्ण सहित 45 पदक के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण सहित कुल 53 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे पेरिस ओलंपिक में पूरे भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री ने खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को हिंडनबर्ग जैसी निराधार और भ्रामक रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने में संयम बरतने की सलाह दी है। शेयर बाजार नियामक सेबी ने एक वक्तव्य में अमरीकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि सेबी के पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों का पता लगाने और समाधान के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था है। सेबी ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिभूतियों और उनके हस्तांतरण के बारे में सेबी अध्यक्ष ने समय समय पर आवश्यक जानकारी दी है। अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की भी पूरी जांच की गई है। शेयर बाजार नियामक ने यह भी कहा है कि वे भारत के पूंजी बाजार और इसकी व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय म्यूचुअल फंड संघ ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ हाल की हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आलोचना की है। संघ ने एक बयान में कहा कि हिंडनबर्ग बाजार का भरोसा तोड़ने और विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के प्रगति पथ में अनावश्यक व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट।
भारतीय म्यूचुअल फंड संघ ने कहा कि सेबी की अध्यक्ष पर आरोप न केवल भारतीय पूंजी बाजार में उनके योगदान को नजरअंदाज करता है बल्कि ये देश की आर्थिक प्रगति को भी कम करके आंकता है। हिंडनबर्ग के दावों में सही संदर्भ और भारतीय नियामक तंत्र के प्रति समझ का अभाव है। इसका उद्देश्य कठिन परिश्रम से अर्जित देश की उपलब्धियों को धूमिल करना है। उद्योग निकाय ने कहा कि बाजार नियामक सेबी ने एक ऐसा सक्रिय बाजार सृजित किया है जिसमें स्थानीय और वैश्विक निवेश शिक्षकों का पूरा भरोसा है। संघ ने कहा कि सेबी की मौजूदा अध्यक्ष के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और सेबी के विनियमों ने म्यूचुअल फंड को सर्वाधिक पारदर्शी और प्रभावी वित्तीय उत्पाद बनाया है। समाचार कक्ष से प्रज्ञानी पांडे।
वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने हिंडनबर्ग के दावों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि इसकी मंशा भारत के शेयर बाजारों को अस्थिर करना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास हो रहा है। इन्फोसिस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दास पाई ने कहा कि सेबी प्रमुख के खिलाफ आरोप बेतुके और बेबुनियाद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत में अस्थिरता पैदा करने की साजिश बताया।
जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है। विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न चाहते हैं।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम ने माधवी बुच की असंदिग्ध निष्ठा का समर्थन करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में तथ्यों का अभाव है। निर्वाचन आयोग का दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से हरियाणा के दो दिन के दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू और आयोग के अन्य अधिकारी राज्य में कई बैठकें करेंगे। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला चुनाव अधिकारियों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। कल निर्वाचन आयोग प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देगा। राजस्थान में शनिवार से लगातार हो रही बारिश से राज्य के विभिन्न भागों में 22 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रशासन ने जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर और भरतपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
भरतपुर जिले के श्रीनगर गांव के पास बाणगंगा नदी में डूबने से 7 युवकों की मौत हो गई। जयपुर के पास कानोता बांध में नहाते समय एक युवक फिसलकर गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के दौरान उसके 4 दोस्त भी डूब गए। इसके अलावा जयपुर समेत कई अन्य जिलों में वर्षा जनित हादसों में करीब 10 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से अतिवृष्टि की स्थिति में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 7 पूर्वी जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय और बिहार में कुछ स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल माह तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तरी भागों में अगले 4 दिन के दौरान तेज बारिश हो सकती है। अगले सप्ताह पश्चिम हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा होने तथा उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपदा के दौरान सुरक्षित रहने के तरीके विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्ण एस वत्स और जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स नई दिल्ली के प्रमुख डॉ कामरान फारूक हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। टेलीफोन नम्बर है 0112342100 और 0112331444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 0112342100 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर आमंत्रित हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। विचार और सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के शुभारंभ की घोषणा की। श्री रेड्डी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पिछले 3 वर्ष से केंद्र सरकार के सहयोग से भव्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग अगले महीने हरियाणा में शुरू होगी। इसे आधिकारिक रूप से वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग नाम दिया गया है। इस अभूतपूर्व टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने, इसे ओलंपिक खेलों में शामिल करने और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसमें इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और इटली सहित विभिन्न देशों की टीम प्रदर्शन करेगी। विश्व कबड्डी और होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की साझेदारी में इस आयोजन का शुभारंभ हरियाणा में होगा। इस पहल के लिए एसोसिएशन और हरियाणा सरकार के बीच हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कबड्डी को ओलंपिक में शामिल करने के प्रयासों का समर्थन किया है। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इसमें कबड्डी को शामिल करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उन्हें 99% से अधिक वोट मिले हैं। रवांडा के मुख्य न्यायाधीश फॉस्टेन नेजियालू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने शांति, संप्रभुता और एकता बहाल रखने का संकल्प लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर।
धन्यवाद फरहत। देश में कम जमीन में अधिक पैदावार करने की पहल करते हुए फसलों की उन्नत किस्में जारी करने की खबर सभी अखबारों की सुर्खी है। फसलों की नई किस्मों से बढ़ेगी किसानों की आय। स्वदेश में विकसित अधिक उपजाऊ बीजों की 109 किस्में जारी, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। हिन्दुस्तान लिखता है बाजरा की फसल 70 दिन में होगी तैयार, कम पानी में उगेगा धान। रक्षाबंधन के बाद जम्मू कश्मीर में होगा चुनावी तारीखों का ऐलान, देशबंधु की खबर है। 21 से 25 अगस्त के बीच घोषित किया जा सकता है कार्यक्रम। बारिश से भीगा रविवार, आज भी बरसने के पूरे आसार, नव भारत टाइम्स की खबर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है देश में झूम कर बरसा सावन। दैनिक जागरण की सुर्खी है राजधानी में 8 दिन की वर्षा ने पूरा किया मानसून का कोटा, 3 डिग्री नीचे आया तापमान। ओलंपिक्स में 6 पदक के साथ भारत का अभियान समाप्त, 1 चांदी और 5 कांस्य पर जमाया कब्जा, जनसत्ता सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल कल, होगा डायवर्जन, एजेंसियां सुरक्षा तैयारियां परखेंगी, कहीं खामियां मिली तो उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है प्रधानमंत्री आवास से लेकर लाल किले तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए।
धन्यवाद नईम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक 2024 भव्य समारोह के साथ संपन्न। अगले ओलंपिक खेल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेरिस ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और हर भारतीय को उन पर गर्व है। सेबी ने निवेशकों को हिंडनबर्ग जैसी भ्रामक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने से पहले संयम बरतने की सलाह दी। अडानी समूह, सेबी अध्यक्ष और उद्योग जगत प्रमुखों ने अमरीकी शोध कंपनी की रिपोर्ट की आलोचना की। भारतीय निर्वाचन आयोग का दल विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर और पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग अगले महीने हरियाणा में शुरू होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।